آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری آج کے پروگرام میں پہلے ہم دنیا کے مسافر سیریز کی پہلی قسط کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا، کچھ دعائیں میں آپ کو بتاؤں گی اور تدبر کی آیات، پھر ہم قیام کریں گے اور آخر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب مل کے دعا کریں گے. تو یہ ہمارا آج چھوٹا سا ایک پروگرام ہے. امید ہے کہ سب لوگ الرٹ بیٹھے ہوں گے، تیار ہوں گے سننے کے لیے، نیند کو اڑا دینے کے لیے کوشش کی ہوگی. اگر نیند آ رہی ہے تو وضو کر لیں، کافی پی لیں، چائے پی لیں، لیکن سوئی بھی حالت میں نہ سنیں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ تعالی. دنیا کے مسافر سیریز میں جو پہلی چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں یہ کہ یہ صرف عبرت دلانے کے لیے، سبق لینے کے لیے، غفلت سے جگانے کے لیے. جیسے کہ ہماری پہلے بھی سیریز ہوتی رہی ہیں، میدان معاشر میں میری کہانی، میری آخری سانسیں، گمنام کی ڈائری، اسی طرح یہ بھی ایک سیریز ہے. اس میں فرضی کردار ہیں، اس لیے کسی کا نام کسی سے میچ ہو جائے تو اس پہ کوئی اس کو ایک اتفاقی چیز سمجھے. اور دوسری یہ بات سمجھ لیجیے گا کہ غیب کی دنیا کسی نے نہیں دیکھی. جتنا ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف اتنا ہی ہم جانتے ہیں. اصل حقیقت تو جب وہاں پہنچیں گے تو تبھی سمجھ میں آئے گی. لہٰذا جو ہمیں احادیث معلومات ملتی ہیں وہ انشاءاللہ ہم ایک یعنی ایک کہانی کی صورت میں ہم دیکھیں گے. اس میں کوئی شریعت کے اصول ڈیفائن نہیں ہو رہے. اگر اس میں کوئی ایسی بات آپ کو ملے کہ جو آپ کو لگے کہ یہ کیا ہے، تو اس کے اوپر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کیسے کوئی بول سکتا ہے، کیسے کوئی کر سکتا ہے. اس لیے کیونکہ یہ صرف ایک یعنی فرضی کہانی بنائی گئی ہے. جیسے ہم بچپن میں سنتے تھے چڑیا اور جگنو کی، تو نہ چڑیا بول سکتی ہے نہ جگنو اس کی مدد کر سکتا ہے، لیکن صرف ایک سمجھنے کے لیے. تو دیکھتے ہیں آج اس کی پہلی قسط. میں شروع سے ایک سنجیدہ آدمی تھا، بہت محفلیں، کہہ کہے، دوست یار، ہنسی مذاق مجھے پسند نہیں تھا. اکثر میں قبرستان آتا ہوں اور یہاں آ کے بہت اچھا لگتا ہے. بیٹھ جاتا ہوں، یہاں کے مکینوں سے باتیں کرتا ہوں. یہ میری سب سے پسندیدہ جگہ ہے. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سکون ہے، یہاں عبرت ہے، یہاں بہت سیکھنے کا سامان ہے. بہت سی کہانیاں یہاں دفن ہیں. بڑے بڑے شاہکار قسم کے وی آئی پی لوگ یہاں پہ ہیں، ایسے جن سے ملنے کے لیے شاید لوگ ٹکٹیں خرچ کرتے ہوں، مگر اب ان سے ملاقات فری ہے. اور اب تو یہاں کے گورکھن بابا سے بھی میری دوستی ہو گئی ہے. چلیں ان سے ملواتا ہوں. السلام علیکم بابا جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں بیٹا. بابا جی آپ کب سے یہاں کام کر رہے ہیں؟ کوئی 25-30 سال گزر چکے بیٹا، بہت قبریں کھو دیں، گنتی بھی نہیں اب تو یاد. کئی لوگوں کو جنازے لاتے دیکھا، پھر ان لوگوں کو خود جنازہ بنتے دیکھا. تو بابا جی اس ویرانے میں آپ کو کیسا لگتا ہے رہنا؟ بیٹا لوگ اس جگہ کو ویرانہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو سب سے زیادہ آباد جگہ ہے. یہاں کی آبادی تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو آپ کو یہاں پہ ڈر نہیں لگتا؟ بابا جی ایک طنزیہ مسکراہٹ سے بکھیر کے کہنے لگے، بیٹا इन लोगों से भला क्या डरना। असल तो डरने के लायक वो लोग हैं जो तुम्हारे शहरों में रहते हैं। वो हैं खतरनाक और खौफनाक। ये तो किसी को कुछ कहते ही नहीं, ये तो खुद मोहताज हैं, ये तो खुद बेबस हैं। ना किसी को कत्ल करते हैं, ना डाके डालते हैं, ना इज्जतें लूटते हैं, ना धोखा देते हैं, ना फ्रॉड करते हैं, ना गीबत करते हैं किसी की, ना झगड़ते हैं, ना कोई कीने हैं इनमें। ये तो अमन वाली बस्ती है। तुम जिंदों की बस्तियां हैं जहां मुर्दा जमीर लोग रहते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे, एक दूसरे से दस्तो गिरेबां होने वाले, एक दूसरे की इज्जतें उछालने वाले और खुद को जिंदा भी कहते हैं। बाबा जी की इस बात से वाकई मैं कायल हो गया कि कहते तो ठीक हैं, देखने में पढ़े लिखे नहीं लगते, मगर बात कितनी समझदारी की है। बाबा जी, ये कब्रिस्तान कितना पुराना है? बाबा जी कहने लगे, पता नहीं बेटा, मैं तो बचपन से ऐसे ही देख रहा हूं, और अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, हजारों कब्रें यहां मौजूद हैं। कई बोसीदा हो चुकी हैं, कई नई हैं, कोई पक्की हैं, कोई कच्ची हैं, मगर कब्र की हालत उसके मकीन की हालत नहीं होती। कब्र कितनी ही बोसीदा हो, तुम नहीं जानते कि मकीन किस हालत में है। बाज दफा कोई कब्र खोदनी पड़ी, दोबारा खोलनी पड़ी तो पता चला मकीन वैसे ही तरोताजा है जैसे अभी दफनाया हो। और कभी नई कब्रों में जाने से पहले ही मकीन का हाल बुरा होता है। इतने सालों में बहुत कुछ देखा है इन आंखों ने, बड़े बड़े हैरत अंगेज वाकयात, इबरतनाक वाकयात। ये अलग ही दुनिया है बेटा, ये आपकी उस दुनिया से बहुत अलग है। इस जगह रह के मैंने मौत को बहुत करीब से देखा। बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले सेठ साहब यहाँ मुंतकिल हो चुके हैं, और रेड़ी चलाने वाला गरीब भी यहाँ है। यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं है, माल की, ओहदे की, दुनियावी स्टेटस की। मालदार की कब्र में एसी नहीं लगे हुए, और गरीब की कब्र बगैर एसी के नहीं है। मालदार कालीनों पे नहीं लेटे हुए, और गरीब चटाई पर नहीं पड़ा हुआ। मालदार ऐशो आराम नहीं कर रहा, और गरीब सिसक नहीं रहा। ऊपर जितने भी संगे मरमर लगा लो, इसके नीचे रहने वालों को इससे कोई सरोकार नहीं है। बाबा जी तेज तेज कदमों से कब्रों के बीच में से चलते हुए जा रहे थे, और मैं उनके पीछे उनकी रफ्तार को पहुंचने की कोशिश कर रहा था। ये कब्रिस्तान खासा आबाद था, कब्र पे कब्र बनी हुई थी। पैर संभाल के चलना पड़ता था कि कहीं किसी पर पैर ना पड़ जाए। किसी दिन ये लोग भी सीधे खड़े होते होंगे, और आज कैसे पड़े हुए, जिंदा होते तो पास से भी किसी को गुजरने ना देते। और अब ये हालत है कि कोई पैर भी रख दे तो कुछ नहीं कर सकते। लोगों का दिल घबराता है तो वो सैरो तफरी के लिए निकल जाते हैं, और मेरा जी घबराता है तो मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ और इन खामोश मकीनों से बातें करता हूँ। इनको देख के मेरा सारा डिप्रेशन दूर हो जाता है, जिंदगी की कदर आ जाती है, एक एक लम्हा कीमती लगने लगता है। और फिर बाबा जी की सोहबत में वो कुछ सीखता हूँ जो अंग्रेजी स्कूलों के मास्टर नहीं सिखा सकते। मैंने एक खुली जगह पाई तो तेजी से बाबा जी के साथ हो गया। बाबा जी, आपको इतनी हिकमत की बातें किसने सिखाई हैं? बाबा जी बेख्तियार मुस्कुरा उठे। बेटा, जिस जगह मैं रहता हूं ना, ये बहुत कुछ सिखा देती है। ये वो हकीकत है जो सबसे ज्यादा सच्ची है, कोई इसका इनकार कर ही नहीं सकता, फिर भी लोग इसको मानना नहीं चाहते। कोई 100 साल का भी हो जाए तो उसका जी नहीं भरता जीने से, चाहे जिंदगी में कितने ही मसले क्यों ना हो। हालांकि मोमिन के लिए तो मौत भी फितनों से बचा देती है। अब देखो ना इनको, ये काट आए अपना वक्त, ना अब इनको ईमान के लुटने का खौफ, ना इनको मौत की परेशानी, ना इनको हलाल हराम के मसले, ना इनको महंगाई की फिक्र, ना इनको सियासत की परवाह, कौन इख्तदार की कुर्सी पे बैठता है और कौन नहीं इनकी बला से। फिर बाबा जी ने एक तरंग से कहा, हमें क्या जो तुर्बत पे मेले लगेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। मैंने कहा, बाबा जी आप तो इनकी हिमायत में बड़ा बोल रहे हैं। बाबा जी हंसते हुए कहने लगे, बेटा अभी तुम बच्चे हो, तुमने अभी जाना ही नहीं कि जिंदगी है क्या। मैंने आहिस्ता से कहा, अच्छा सही कहते होंगे, इनका तजर्बा तो 70-80 सालों का होगा, मैं कहाँ इनके इल्म तक पहुंच सकता हूँ। वाकई जिंदगी के नशीबो फराज से गुजर कर इंसान पुख्ता हो जाता है, मगर ऐसी बातें हर बूढ़ा नहीं करता। हो सकता है इस माहौल ने बाबा जी को इतना कुछ पढ़ा दिया, सिखा दिया, इसीलिए मेरा हमेशा जी चाहता था कि इनके पास बैठूं और इनसे सीखूं, मगर वो हमेशा ही मसरूफ नजर आते थे। कभी किसी कब्र की मिट्टी दुरुस्त कर रहे हैं, कभी किसी का कतबा साफ कर रहे हैं, कभी नई कब्र खोद रहे हैं, और कुछ नहीं तो अपने क्वार्टर में कुरान पढ़ते नजर आते थे। ये कब्रिस्तान भी वाकई बड़ी अजीब जगह है, आप चलते जाते हैं और कब्रों पे लगे कतबे पढ़ते जाते हैं, 1919 से 1980, 1950 से 1995, 1970 से 2015, 1965 से 2018। हमारे यहाँ तो सिर्फ तारीख पैदाइश ही हर जगह लिखी जाती है, यहाँ की दुनिया और है, यहाँ पे साथ एक और भी नंबर लिखा होता है, और यही इनकी सारी जिंदगी है। इतने से सालों में इन्होंने जी लिया जो जीना था, इसी में खा लिया, पी लिया, सो लिया, जाग लिया, लड़ाई झगड़े कर लिए, नमाजें पढ़ ली, जिक्र अजकार कर लिए, जो करना था सब कर चुके, बस इतनी मुख्तसर सी जिंदगी। ये नंबर नहीं है, ये इनकी पूरी कहानी है। मुझे तो सबके ही नंबर बहुत कम लगे, बहुत कम अरसे की जिंदगियां, कोई 25 साल, कोई 60 साल, कोई 70 साल। जब सिर्फ तारीख पैदाइश लिखी होती है ना और आगे कुछ नहीं होता, तो लगता है बहुत चलना है अभी, मगर दूसरा नंबर आने की देर होती है, सब कुछ कितना मुख्तसर सा लगने लगता है, लगता है बस इतनी सी जिंदगी थी। वाकई जब तक दूसरा नंबर नहीं लगा होता तो इंसान धोखा खा जाता है। बाबा जी अपने हाथ में पकड़ी बाल्टी से हल्का हल्का पानी छिड़काते जा रहे थे, शायद ताकि धूल मट्टी कुछ बैठ जाए, क्योंकि दूर दूर तक मट्टी के सिवा यहां पे कुछ भी नहीं था। इंसान मट्टी से बना और मट्टी हो गया। मैंने पूछा, बाबा जी कोई बंदा नजर नहीं आ रहा यहाँ, क्या कोई नहीं आता? आते हैं बेटा, मगर कभी कभी। बच्चे किसको फुर्सत है कि अपनी मसरूफ तरीन जिंदगी से वक्त निकाले इनके लिए। शुरू में जब कोई नया नया आता है तो लोग रोज आते हैं, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगते हैं। इंसान जब तक जिंदा होता है तो खुद को सबसे अहम समझता है, मगर जब चला जाता है तो भूली बिसरी दास्तान बन जाता है, और किसी को भी याद नहीं रहता कि कोई इस नाम का था भी या नहीं। जाने वाले भी चले जाते हैं और उनके ऊपर रोने वाले भी चले जाते हैं। काश इस हकीकत को लोग समझ जाते। मैंने आहिस्ता से कहा, हाँ वैसे भी कोई यहाँ आए या ना आए, इन्होंने कौन सी शिकायत करनी है, इनको अब क्या फर्क पड़ता है। कोई आ जाएगा तो दुआ कर जाएगा, और ना भी आया तो इन्होंने कौन सा गिरेबान पकड़ लेना है। वाकई बाबा जी सही तो कहते हैं, यही जब जिंदा होते हैं तो इनके साथ बैठ के लोग हंसते हैं, बोलते हैं, और जब ये चले जाते हैं तो यूं लगता है कभी आए ही नहीं थे। एक कब्र ने चलते चलते मेरे गोया पैर जकड़ लिया। मैं इस कब्र के करीब बैठ गया। धुंधले धुंधले से कुछ हरूफ नजर आ रहे थे। मैंने मिट्टी से अटे कतबे को अपने रुमाल से साफ किया तो वाकई जो धुंधला सा मैंने देखा था वो नजर का धोखा नहीं था, वो सच था। रुस्तमे जमान, गामा पहलवान, गोल्ड मेडलिस्ट, ए पहलवान, तू भी मौत से ना लड़ सका, तू भी इसको पिछाड़ ना सका, तेरे गोल्ड मेडल का क्या फायदा हुआ? अरे तेरी पहलवानी तेरे क्या कुछ भी काम ना आई? तूने जिंदगी में कितनों को शिकस्त दी होगी, कितनों की हड्डी तोड़ी होगी, कितनों की आंख फोड़ी होगी, कितनों के दांत निकाल दिए होंगे, और आज कोई तेरी कब्र पे मुक्कों की बारिश भी कर दे तो तू बदला नहीं ले सकता। तूने कैसे ये शिकस्त बर्दाश्त कर ली? मुझे ऐसे लगा गोया वो कह रहा हो कि भाई मौत वो पहलवान है जो सबको पिछाड़ देती है, जिसके सामने सब हार जाते हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और इससे भाग के कोई छुप नहीं सकता, लिहाजा इससे जोर आजमाई बेकार है। ये तो मुझे रोज पुकारती थी मेरी कब्र, कहा करती थी ए इब्ने आदम तू मुझे भूल गया है, मैं तन्हाई का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं, मैं कीड़ों का घर हूं, मैं अंधेरों का घर हूं, लेकिन मैं ही भूला रहा, मैं खेल कूद में पड़ा रहा, मैंने इसकी पुकार सुनी ही नहीं। मैंने एक ठंडी आह भरी और वहां से चल दिया और एक नजर मीलों फैले हुए इस कब्रिस्तान पे डाली। यूं लगता था कब्रों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है, कोई ऊंची कोई नीची, कोई ताजा कोई पुरानी कब्र। क्या इतने लोग शहर से यहां आकर मुंतकिल हो गए? क्या इतने लोगों ने इस जगह को अपना ठिकाना बना लिया? और मेरा भी तो यही ठिकाना है। मैं हल्के हल्के से गुनगुनाने लगा, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। काश इंसान इस बात को जान ले तो इस मुख्तसर जिंदगी को ऐसे ना गुजारे जैसे भूल के गुजार रहा है, गफलतों के पर्दे हट जाएं उसकी आंखों के आगे से, अगर वो इस हकीकत को पहचान ले कि उसका असल ठिकाना ये घर है वो घर नहीं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इसे सीख सकें, इन बातों से वाकई हम इबरत ले सकें। यहाँ तक आज की किस्त मुकम्मल हुई, इंशाल्लाह बाकी कल देखेंगे, देखते हैं इसके बाद हम जो जिक्र करना है हमने इंशाल्लाह उसकी तरफ आते हैं। पहले आप सुनिए दरूद शरीफ और आज की जो दुआ है।